अध्याय एक, बाल विकास का अध्ययन एक परिचय, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति अथवा बालक एक समान नहीं होते, भले ही वे जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही देखने को मिलता है, चाहे वह अंतर आंतरिक गुणों का हो अथवा बाह्य गुणों का। एक ही माता के कोख से उत्पन्न दो बालकों के स्वभाव, रंग रूप, आकार, व्यवहार, तेजस्विता, बुद्धिलब्धि, आईक्यू में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। एक बालक जहां तीव्र बुद्धि के होते हैं, वहीं दूसरा बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं। अतः तीव्र बुद्धि के बालकों की शिक्षा दीक्षा सामान्य बुद्धि के बालकों के साथ किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि तीव्र बुद्धि का बालक सामान्य बुद्धि के बालक की अपेक्षा चीजों को जल्दी सीखता है, उसकी स्मरण शक्ति एवं ग्राह्य क्षमता भी अधिक होती है। अतः सामान्य बुद्धि वाले बालक के मन में तीव्र बुद्धि वाले बालक के प्रति ईर्ष्या एवं क्रोध का भाव उत्पन्न होगा, उसमें हीन भावना पनपने लगेगी। वहीं तीव्र बुद्धि वाला बालक भी कुंठा का शिकार होगा, क्योंकि वह अपनी क्षमता के मुताबिक अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दोनों ही बालकों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए बाल विकास का अध्ययन किया जाना जरूरी है। बाल अध्ययन, चाइल्ड स्टडी, कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन समय से ही भारतीय मनीषियों व ऋषि मुनियों ने बाल अध्ययन के महत्व को स्वीकारा है तथा बालकों के बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए उपाय सुझाए हैं। रामायण एवं महाभारत में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। बालक जब माता के गर्भ में रहता है, तभी पुंशवन संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार करवाए जाते हैं, ताकि गर्भस्थ शिशु में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। इतना ही नहीं, गर्भवती माता को यह भी सलाह दी जाती है कि वह चिंता मुक्त होकर धार्मिक व नैतिक कार्य करे, संतुलित पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करे, पूजा पाठ धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाए। ऐसा करने से उसके कोख से उत्पन्न संतान श्रेष्ठ गुणों वाला एवं संस्कारित होगा। इतिहास गवाह है कि चाणक्य के पिता आचार्य चाणक्य ने चाणक्य को बचपन से अच्छे शील गुणों से संस्कारित किया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। चाणक्य एक अच्छे अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ बने तथा नंदवंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर का विश्व विजेता बनने का सपना भी चकनाचूर कर दिया। पृष्ठ संख्या 2, बाल अध्ययन का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड स्टडी। बाल अध्ययन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज प्रत्येक माता पिता अपने संतान को सुखी, संपन्न एवं संस्कारवान होते देखना चाहता है। वह चाहता है कि हमारा बालक पढ़ लिख कर योग्य व्यक्ति बने, जीवन में सफलता प्राप्त करे और उनका नाम जग में रोशन करे। मानव कल्याण के लिए कार्य करना अच्छा है। यदि बाल विकास के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक लोग बाल अध्ययन की आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं देते थे। वे बालकों को ही लघु प्रौढ़ मान लेते थे और उसी के अनुसार व्यवहार करते थे। वे बालकों के खान पान, शिक्षण प्रशिक्षण, पहनावे आदि पर विशेष ध्यान नहीं देते थे तथा बालकों का पहनावा काफ़ी हद तक प्रौढ़ों से मिलता जुलता था, अर्थात वे बालकों के समुचित विकास के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य बालकों के भीतर छिपे हुए गुणों का विकास करना नहीं, अपितु उन्हें समाज के अनुरूप बनाना था। परंतु यदि प्राचीन समय के दार्शनिक के विचारों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि उनका विचार बालकों के समुचित विकास से ही संबंधित था। ग्रीक दार्शनिकों का मानना है कि बाल्यावस्था की घटनाएं बालक के बाद के विकास पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो 427 से 347 BC ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस बात को स्वीकारा है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यवसायिक कुशलताओं एवं सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। रूसो, फ्रावेल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट आदि दार्शनिकों का भी ऐसा ही मानना है कि बालकों की मानसिक क्षमताएं एवं योग्यताएं प्रौढ़ों से भिन्न होता है। उनकी समझ, चिंतन, तर्कन, स्मरण, संवेग, बौद्धिक क्षमता आदि प्रौढ़ों से भिन्न होता है। बालकों के संवेग जहाँ क्षणिक होते हैं, वहीं प्रौढ़ों के संवेग काफी समय तक बने रहते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 17वीं शताब्दी में सबसे पहले जॉन अमास कामेरियन ने बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने सन 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। सन 1657 में ऑर्बिस पिक्चर्स नामक पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक में पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से अत्यंत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। उनका यह प्रयास काफी सराहनीय रहा। इससे लोगों का ध्यान बाल अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो, पेस्टोलॉजी, टाइडमैन, हर्बर्ट, फ्रावेल जैसे महान दार्शनिकों ने बाल विकास के अध्ययन पर जोर दिया। जॉन लॉक का मानना था कि बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण का प्रमुख योगदान है। उन्होंने बाल मन को समझने का प्रयास किया तथा उनकी रुचियों, क्षमताओं, इच्छाओं, अभिवृत्तियों आदि को जानने पर बल दिया। सबसे पहले पेस्टोलॉजी ही इस महान बाल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1774 ईस्वी में बाल अध्ययन का प्रस्तुतीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया। इन्होंने अपने ही 7.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया तथा उसके क्रमिक तरीके से लिखा गया, जिसमें बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया। यह अध्ययन बालक की जीवनी बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। सन 1787 में जर्मन चिकित्सक टाइडमैन ने अपने बच्चों के प्रारंभिक विकास में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक आदि विकासों का विवरण वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस महान बाल मनोवैज्ञानिक के अध्ययनों से बाल विकास को एक नई दिशा मिली। पृष्ठ संख्या 3। 19वीं सदी में जीव विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों, विद्वानों का अध्ययन भी बाल अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ तथा इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोणों से बालक के व्यवहार एवं विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन आरंभ किया। सर्वप्रथम टैन ने 1876 ईस्वी में इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने बालकों की भाषा विकास के बारे में बताया। 1887 में डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद जर्मन मनोवैज्ञानिक विलहेम प्रेयर ने 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने अपने ही पुत्र के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के विकास के बारे में विस्तार से बताया था तथा उसकी जीवनी तैयार की। उन्होंने यह भी बताया कि मानव शिशुओं तथा पशुओं की सहज क्रियाओं के विकास की गति प्रायः समान होती है। 19वीं सदी में ही अमेरिका में ही बाल अध्ययन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, जिसके प्रणेता स्टेनले हॉल थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बेबी बायोग्राफी तैयार किया। इतना ही नहीं, इन्होंने 1891 ईस्वी में पेडोलॉजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करवाया। अतः इन्हें बाल अध्ययन आंदोलन के पिता की संज्ञा दी गई। इन्होंने बाल विकास से संबंधित अनेक अध्ययन किए तथा हजारों लेखों का प्रकाशन करवाया। मिलिसिएंट शिन ने भी अपनी 1 वर्षीय भतीजी के विकास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले स्टेनले हॉल ने ही बाल अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की, जिसमें प्रश्नावली विधि प्रमुख थी। इन्होंने एडसोलेंस नामक पुस्तक की भी रचना की, जिसमें किशोर वय बालक बालिकाओं के विभिन्न विकास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया। इन्होंने किशोर की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया। 19वीं सदी के अंत तक न केवल जर्मनी व अमेरिका में ही बल्कि विश्व के अनेक देशों में बाल अध्ययन हेतु अनेक बाल अध्ययन केंद्र खोले गए तथा असामान्य एवं विशिष्ट बालकों के अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक उपचार शालाओं की व्यवस्था की गई। बाल अध्ययन की दृष्टि में 20वीं शताब्दी काफी महत्वपूर्ण रहा। इस शताब्दी में बाल अध्ययन की विधियों में व्यापक सुधार हुआ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विने ने 1908 में तथा 1911 में बालकों के बुद्धि परीक्षण हेतु मानदंड तैयार किया तथा 1928 में गिस्ले ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ पुस्तक की रचना की। जीन पियारे ने सन 1926 में लैंग्वेज एंड थाट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा भी इन्होंने कई और पुस्तकें लिखीं जो बाल विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। पृष्ठ संख्या 4। सन 1930 तक बाल विकास की विषय सामग्री काफ़ी सीमित थी। इस अवधि तक बाल अध्ययन में मुख्य रूप से बालकों के भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तथा विभिन्न व्यवहारों के विकास की कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं पर ही प्रकाश डाला गया था। शेष विकास पहलुओं को यूं ही छोड़ दिया गया था, परंतु इसके बाद बाल विकास के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ तथा अब न केवल बाल विकास अपितु मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं प्रोसेस अंडरलाइनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाने लगा। सन 1974 में मसन एवं साथियों ने बाल अध्ययन की नई चलन न्यू ट्रेंड के बारे में भी लिखा है। रिसर्चर्स इन द फील्ड हैव बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनेशन विद द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म अंडरलाइंग ह्यूमन डेवलपमेंट। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए और साथ ही 21वीं सदी के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। आज बालकों को राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति माना गया है, इसलिए इनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए न केवल माता पिता व परिवार के सदस्य, समाज तथा राष्ट्र ही चिंतित हैं बल्कि समूचा विश्व चिंतित है। बालकों के बहुमुखी विकास के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा विकास के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बालकों के शिक्षण हेतु नई शिक्षा पद्धति का विकास किया गया है। बस्ता को बोझ माना गया है। बालकों को पढ़ाने के लिए नए नए स्कूल खोले गए हैं तथा उन्हें पढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का सहारा लिया गया है। सॉफ्ट टॉयज, चित्रों एवं तस्वीरों के माध्यम से बालकों को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया जाता है तथा पढ़ने लिखने के प्रति रुचि विकसित की जाती है। इसके लिए नर्सरी कक्षा से ही पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न रंगों, खिलौनों, चित्रों आदि के माध्यम से उन्हें रंगों का ज्ञान कराया जाता है। खेल खेल के माध्यम से उन्हें पढ़ना लिखना, गणित के प्रश्नों को सुलझाना, पहेलियां बुझाना आदि सिखाया जाता है। 2 से 2.5 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना की जाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं तथा इस दिशा में पूरा राष्ट्र प्रयासरत व समर्पित है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल्यकाल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था भावी जीवन का आधारशिला प्रस्तुत करता है। तभी तो कहा गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बालक बचपन से भी जो भी अपने माता पिता व परिवारजनों से सीखता है, उसकी अमिट छाप जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व में झलकती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी मानना है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा, इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। पृष्ठ संख्या 5। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने से पूर्व इसके अर्थ को जानना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात जो अभी वयस्क नहीं हुआ है। अतः गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक बालिकाओं को बालक कहते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी से तात्पर्य है मन का विज्ञान, द साइंस ऑफ माइंड। अतः मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन करता है। यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जाती है। विभिन्न शिक्षाविदों, दार्शनिकों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, क्रो एवं क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम हिज पेरेंटल बिगिनिंग्स थ्रू द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस डेवलपमेंट, एलसी क्रो एंड ए क्रो। नंबर दो, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बीइंग इन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, जेम्स ड्रेवर। नंबर तीन, आइजनेक के अनुसार, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है जो शिशु जन्म पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ एंड बिफोर थ्रू इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी, एच जे आइजनेक। नंबर चार, क्रिक पैट्रिक के अनुसार, बाल मनोविज्ञान उन सभी विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है जो जन्म के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो प्रौढ़ की विशेषताओं से भिन्न हैं तथा जो विकास के सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसके अनुसार शैशवावस्था और पूर्ण परिपक्वावस्था के बीच आकार, बनावट, संरचना तथा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। चाइल्ड स्टडी इज कंसर्न्ड विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आल प्रेजेंट एट बर्थ इन सो फार एज दे डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट्स एंड विद द जनरल लॉज ऑफ डेवलपमेंट टू विच चेंज इन साइज, स्ट्रक्चर एंड इंसेंटिव्स टेक्स प्लेस बिटवीन अर्ली इन्फेंसी एंड कंप्लीट मैच्योरिटी। क्रिक पैट्रिक, पृष्ठ संख्या 6। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास तथा उनके व्यवहारों, अभिवृत्तियों, रुचियों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड दियर बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलेसेंस स्टेज। बाल विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास का ही अर्थ लिया जाता है, परंतु इन दोनों में व्यापक अंतर है। 20वीं सदी तक के दार्शनिकों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के अध्ययन में जो भी अध्ययन किए थे, वे अधिकांशतः नवजात शिशुओं और स्कूल में अध्ययनरत बच्चों तक ही सीमित थे। यह अध्ययन मुख्यतः बालकों की रुचियों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों तथा शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं से ही संबंधित थे। इस कारण इसे बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई, परंतु बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन क्यों होते हैं, इन सब का आभास बाल मनोविज्ञान से नहीं हो पाता है। अतः बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक व विस्तृत है। सारांश में, बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। अतः स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान जहां बालकों की क्षमताओं का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास में बालकों के क्षमताओं के विकास का भी अध्ययन करता है। बाल विकास के अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अलग स्थापना की गई है, जिसमें मानव विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की जाती है। ईबी हरलॉक ने बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के संदर्भ में अपने विचार कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्फेसिस द फोकस वॉज नाउ ऑन द पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रेदर देन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया है क्योंकि अब न केवल बालक के विकास के किसी एक या दो पहलू का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अध्ययन किया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के अनुसार विकास को अपने अपने तरीके से परिभाषित किए गए हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, मुसेन एवं साथियों के अनुसार आज भी बाल विकास के अनेक अध्ययनों का संबंध आयु प्रवृत्ति एज ट्रेंड से संबंधित है, जिसमें आयु संबंधी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक तर्क, नैतिकता, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में यह भी ज्ञात करने के प्रयास किए जाते हैं कि विकास से संबंधित परिवर्तन किस प्रकार और किन कारणों से हो रहे हैं। पृष्ठ संख्या 7। चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद एज ट्रेंड पार्टिकुलरली इन एरियाज लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी रीजनिंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड ऑन द प्रोसेस अंडरलाइंग दियर चेंजेज व्हाई एंड हाउ दे चेंजेज ऑकर्स मसन एंड एटल। नंबर दो, हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था की दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक या सार्वभौमिक हैं। टुडे द मेजर इंफेंसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑन डिस्कवरिंग द करेक्टरिस्टिक चेंजेस इन अपीयरेंस बिहेवियर इंटरेस्ट्स एंड गोल्स एज द चाइल्ड पैसेस फ्रॉम वन डेवलपमेंटल पीरियड टू अनदर। इन एडिशन चाइल्ड डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट व्हेन दीज चेंजेस आकर नॉर्मली व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एंड वेदर दे आर इंडिविजुअल आर यूनिवर्सल। ई बी हरलॉक। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में मुख्य अंतर क्या हैं, इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। नंबर एक, बालकों के केवल रचनात्मक परिवर्तनों कंस्ट्रक्टिव चेंजेस का ही अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में यह बालकों के संपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन करता है, चाहे वह रचनात्मक हो या विकासात्मक। इसका विस्तार बालक के बीजारोपण से लेकर किशोरावस्था तक होता है। नंबर दो, बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल वर्तमान क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालकों के वर्तमान का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही भूत का अनुमान तथा भविष्य की कल्पना भी करता है तथा इसके माध्यम से बालक के संबंध में भविष्यवाणी की भी की जाती है कि आगे चलकर बालक क्या बनेगा। नंबर तीन, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन व्यवहारों रुचियों व अभिवृत्तियों को समझना है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करने से है, बालकों के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसके सुंदर भविष्य की रचना करना है। नंबर चार, बाल मनोविज्ञान में बाल व्यवहार एवं उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालक की क्षमताओं के विकास की दिशा एवं गति निर्धारित करना है। नंबर 5, बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्कन शक्ति आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालकों के मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ ही साथ यह भी अध्ययन किया जाता है कि वे क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होते हैं, किस आयु में चरम सीमा पर होते हैं, अतः इसका दृष्टिकोण बालक के समुचित विकास से संबंधित रहता है। नंबर 6, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों तक बाल मानव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या और किन किन कारणों के परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। पृष्ठ संख्या 8, बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है। यह बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। यहाँ बालक से तात्पर्य मानव से है, जिसमें न केवल गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के विकास अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, बल्कि गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के सभी विकास अवस्थाओं, उनमें होने वाले क्रमिक परिवर्तनों, विभिन्न आयामों, मानसिक प्रक्रियाओं आदि पर भी बल दिया जाता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन किन कारणों से क्यों और कैसे होते हैं, किस आयु स्तर पर चरम सीमा पर होते हैं आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अतः बाल विकास का विषय क्षेत्र काफी बड़ा है। बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित बातों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का गहन अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास क्रम में कई अवस्थाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया जाना जरूरी है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व व उत्तर बाल्यावस्था, वयःसंधि अवस्था, पूर्व व उत्तर किशोरावस्था। गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, डिम्बावस्था, पीरियड ऑफ ओवम, भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। नंबर 3, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ फेटस। पृष्ठ संख्या 9, गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, गामक, संवेगात्मक आदि विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जिस शिशु का आकार केवल 1 पिन के नोक के बराबर होता है, वही शिशु 9 माह की अवस्था प्राप्त करते करते पूर्ण बालक का रूप धारण कर लेता है तथा 17 से 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण वयस्क बन जाता है। वह अपनी समस्त जिम्मेदारियों का पालन करने लगता है। इतना ही नहीं, उसमें अपने ही जैसे शिशु को उत्पन्न करने की विलक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक विकास अवस्था को अपनी अलग अलग विशेषता होती है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में पहुँचने पर बालक के शारीरिक, मानसिक, गामक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भाषा आदि का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि नित्य नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठाने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमान के आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। बाल्यावस्था में बालक में जो विशेषताएं होती है, वही विशेषताएं किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त करते करते विलुप्त हो जाती हैं और उसके स्थान पर नवीन विशेषताओं का उदय हो जाता है। नंबर 2, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास में न केवल विकास के किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत अनेक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नंबर 1, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, नंबर 2, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, नंबर 3, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नंबर 4, क्रियात्मक अथवा गामक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, नंबर 5, नैतिक व चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नंबर 6, अनुशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, नंबर 7 खेल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्ले, नंबर 8 भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नंबर 9 संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नंबर 10 संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नंबर 11 सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, नंबर 12 व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नंबर 13 सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, नंबर 14 कल्पना, चिंतन, तर्कन एवं स्मरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी पावर, नंबर 15 आचरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। उपरोक्त विकास की इन प्रक्रियाओं का उद्भव व समापन गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक किस प्रकार, कैसे व कब होता है, इन सभी का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। पृष्ठ संख्या 10। नंबर 3 बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों के विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान है, इसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास की एक निश्चित सीमा फिक्स्ड बॉर्डर निर्धारित कर देती है। बालक इन्हें अपने माता पिता के उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं। गर्भाधान के समय ही क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स के माध्यम से यह निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, त्वचा का रंग, बुद्धि आदि किस प्रकार की होगी। माता पिता के जैसे गुण व विशेषताएँ होती हैं, वे गुण व विशेषताएँ वंशानुक्रम के माध्यम से स्वतः ही बालक में समाहित हो जाते हैं। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे, सुसभ्य एवं सुसंस्कारित होते हैं, जीनियस बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, उनके संतानों में यह गुण स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। माता पिता का जैसा रंग रूप, शरीर, त्वचा, शक्ल सूरत आदि होता है, वैसा ही बालकों में भी पाया जाता है। यही कारण है कि माता पिता के शक्ल सूरत से बालक का शक्ल सूरत काफी हद तक मिलता जुलता है। नंबर 4 बाल विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों के विकास पर न केवल वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, बल्कि वातावरणीय कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह यह है कि नंबर 1 बालक वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है, नंबर 2 वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कारण स्पष्ट है कि वातावरण में बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र की तरह होता है। व्यक्ति अपने वातावरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि एक पढ़े लिखे, सुसभ्य एवं संस्कारित माता पिता के संतान को यदि चोर, डकैत, अपहरण कर ले जाते हैं तथा गलत तरीके से अनैतिक आचरण करना सिखाते हैं, तो बालक में वही गुण अविकसित हो जाते हैं। यह सब वातावरण के प्रभाव के कारण ही होता है। बालकों में गलत आदतों का निर्माण, बाल अपराध की प्रवृत्ति, व्यक्तित्व विघटन तथा समायोजन की समस्याएँ आदि अनुपयुक्त एवं दूषित वातावरण के कारण ही उत्पन्न होती है। नंबर 5 बाल विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों के विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। अधिगम एवं परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परिपक्वता आंतरिक होती है। जब तक बालक के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती, तब तक बालक कुछ भी नहीं सीख सकता है, चाहे वह सिखाने के लिए कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं। इसी प्रकार यदि बालक को उनकी अवस्था के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिए जाएं, तो वह नहीं सीख पाता है। अतः विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगम एवं परिपक्वता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालकों की आयु को ध्यान में रखकर उसे सिखाना चाहिए, अन्यथा वह आयु पार करने के बाद नहीं सीख पाता है तथा उसमें हीन भावना एवं कुंठा भर जाती है। पृष्ठ संख्या 11, नंबर 6, बाल व्यवहारों तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। बाल विकास के अंतर्गत बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। वह जिन व्यवहारों का प्रदर्शन शैशवावस्था या बचपनावस्था में करता है, उन्हीं व्यवहारों का प्रदर्शन वह किशोरावस्था व युवावस्था में नहीं करता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों, समाज के लोगों, खेल के साथियों आदि के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है तथा इसके साथ अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं। खेल के साथियों के साथ जहां वह खुलकर बातचीत करता है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, वहीं वह शिक्षकों के समक्ष अनुशासन में रहने की चेष्टा करता है। विभिन्न लोगों के साथ अंतःक्रियाओं को करने में त्याग, बलिदान, सहयोग, सहिष्णुता, तत्परता, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। यदि बालक एक निश्चित आयु में दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो यह जानने का प्रयास किया जाता है कि ये अंतःक्रियाएँ कौन सी हैं तथा बालक किन कारणों से दूसरों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है। इसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं? क्या ये अंतःक्रियाएँ बालकों के समायोजन में पूर्ण योगदान देते हैं? यदि इनका समाधान नहीं किया जाए तो बालकों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आदि आदि। बालक जिस परिवेश या वातावरण में रहता है, उस वातावरण में उसे निरंतर कुछ न कुछ उद्दीपक मिलते रहते हैं, जिसका रिस्पांस बालक देता रहता है। यही कारण है कि वातावरण के संपर्क में अंतःक्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। जैसे बादल के गरजने पर छोटे बालक डर जाते हैं और माता की आंचल में छिप जाते हैं, इसी प्रकार किसी अजनबी के आने पर बालक भयभीत हो जाते हैं तथा माता अथवा अपने दादा दादी के पास जाकर छिप जाता है। वहीं बालक अपने प्रियजनों को देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। वे दौड़कर उनके पास जाते हैं और गोद में उठा लेने की जिद करते हैं। अतः अंतःक्रियाएं सहयोग, समायोजन तथा व्यवस्थापन बिठाने में सहायक भी हो सकते हैं और नहीं भी। कई अंतःक्रियाएं बालकों में तनाव, संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या एवं झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जैसे यदि एक बालक दूसरे बालक का खिलौना छीनता है तथा उसके साथ मारपीट करता है, उसके बाल नोचता है, तब दूसरा बालक पहले बालक के साथ मारपीट करता है। अतः बालक में आपस में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। मानव विकास में इस अंतःक्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ संख्या 12, नंबर 7, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यद्यपि सभी बालकों के विकास क्रम में काफी हद तक समानता देखने को मिलती है, उनमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक आदि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, फिर भी बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती ही हैं। यहाँ तक कि एक ही माता के कोख में पले बढ़े जुड़वा बालकों में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनकी सभी आदतें, रुचियां, शारीरिक व मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता आदि एक जैसे हो। शारीरिक विकास पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, जो कुछ धीमी गति से होता है। कुछ बालक लंबे कद के होते हैं तो कुछ नाटे कद के। कुछ बालकों की लंबाई सामान्य रहती है। इसी प्रकार बौद्धिक दृष्टिकोण से भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ सामान्य बुद्धि के और कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। इसी प्रकार यदि संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि कुछ बालक अधिक संवेदनशील होते हैं और कुछ कम संवेदनशील। अतः स्पष्ट है कि विकास क्रम में विभिन्न बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नंबर 8, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे स्मरण, चिंतन, तर्कन, प्रत्यक्षीकरण, साहचर्य, अधिगम, सृजनात्मक क्षमता, कल्पना शक्ति आदि। विभिन्न आयु स्तरों पर मानसिक क्रियाओं का विकास किस प्रकार से, कैसे और किस गति से होता है? किस आयु स्तर पर मानसिक विकास अपने चरम सीमा पर होता है? यदि कोई बालक जन्म से ही मानसिक रूप से अक्षम या मंद बुद्धि का है तो उसके विकास हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? इन सब का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। नंबर 9, बालकों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत न केवल सामान्य बालकों का विकास ही अध्ययन किया जाता है बल्कि असामान्य एवं विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कुशाग्र बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना आदि शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालक, असामान्य बालक, भाषा संबंधी दोषों से युक्त बालक जैसे हकलाना, तुतलाना आदि। इन बालकों को शिक्षित करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं। कुछ बालकों में असामान्य आदतों का विकास हो जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, दूसरों को मारना व तंग करना आदि। इन बालकों में अपेक्षित सुधार लाने के प्रयास भी किए जाते हैं ताकि ये सामान्य जीवन जी सकें। उन्हें प्रशिक्षण देकर धनार्जन योग्य बनाया जाता है। नंबर 10, बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ चाइल्ड्स स्पेशल एबिलिटीज। कुछ बालकों में जन्मजात प्रतिभा होती है, वे पैदाइशी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा का विकास किया जाता है। मानव विकास में ऐसे प्रतिभावान बालकों की रुचियों, विशेषताओं, स्वभाव आदि के संबंध में अध्ययन से यह पता चल जाता है कि अमुक बालक आगे चलकर सफल वैज्ञानिक बनेगा या राजनीतिज्ञ, अंतरिक्ष यात्री बनेगा या कुशल चिकित्सक, मंत्री बनेगा या शिक्षाविद, बालक किस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेगा, बालक में जिस प्रकार की योग्यताएं हैं उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार मानव विकास के अध्ययन में बालकों के योग्यताओं को पहचानने एवं उन्हें शिक्षित करने में सहायता मिलती है। पृष्ठ संख्या 13। नंबर 11, बालकों की रुचियों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेंस इंटरेस्ट। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की रुचियों का अध्ययन किया जाता है। अक्सर यह देखने में आता है कि बालक इतिहास पढ़ना चाहता है परंतु माता पिता बालक को गणित या विज्ञान विषय पढ़ने के लिए दबाव डालते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि उनका बालक विश्वविख्यात इंजीनियर बने, इसलिए वे अपनी इच्छा को बालक पर थोपते हैं, परंतु नतीजा इसके विपरीत होता है। बालक न तो इतिहास पढ़ पाता है और न ही गणित व विज्ञान विषय को पढ़कर नामी इंजीनियर ही बन पाता है, अतः बालक का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालक किसी कार्य को किस तरह और कैसे करेगा तथा उसमें किस हद तक सफलता अर्जित करेगा, यह मुख्यतः उसकी कार्यशैली एवं रुचियों पर निर्भर करता है। हम सभी को ज्ञात है कि रुचियां अर्जित होती हैं न कि जन्मजात, हम उन्हें विकसित कर सकते हैं। रुचियां कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती हैं और लक्ष्य पूर्ति को आसान बनाती है। व्यक्ति को जिस काम में रुचि होती है वह उस कार्य को पूरे मनोयोग से पूरा कर लेता है। नंबर 12, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ पर्सनल असेसमेंट। बाल विकास के अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का मापन तथा मूल्यांकन किया जाता है। बुद्धि लब्धि के परीक्षण हेतु कई मानदंड तैयार किए जाते हैं। बिने साइमन का बुद्धि लब्धि परीक्षण काफी प्रचलित है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की योग्यताओं को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों द्वारा नित्य नए वैज्ञानिक तथा प्रमापीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं का मापन करके उनके बुद्धि लब्धि तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। नंबर 13, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। शैशवावस्था व बचपनावस्था में बालक को केवल अपने चारों तरफ के वातावरण से ही समायोजन बिठाना पड़ता है, जिसमें उसके माता पिता काफी हद तक योगदान देते हैं। परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तथा वे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर पग बढ़ाते हैं, समायोजन की समस्या विकराल रूप धारण करके नजर आती है। बाल्यावस्था में बालक के जिन गतिविधियों को नज़रअंदाज किया जाता है, माता पिता उसे बाल सुलभ क्रिया को समझकर आनंद मग्न होते हैं, वही क्रिया बड़े होने पर दुखदायी साबित होती है, माता पिता शर्मसार होते हैं। उदाहरणार्थ छोटे बच्चों की तोतली बोली मधुर व प्यारी लगती है, किंतु यदि बालक बड़ा होने पर भी उसी तरह तोतली बोली बोलता है अथवा हकलाकर बोलता है तो यह उसकी भाषा संबंधी दोष या समस्या माना जाता है। पृष्ठ संख्या 14। इन समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी होता है। जब बालक स्कूल जाने लायक हो जाता है तथा वह स्कूल जाने लगता है, तब वहाँ उसे अपने अध्यापकों, विद्यालय के साथियों के साथ समायोजन बिठाना पड़ता है। हो सकता है कि बालकों को समायोजन बिठाने में कठिनाई आए। इसी प्रकार किशोर वय के बालक बालिकाओं को भी अपने माता पिता के साथ समायोजन बिठाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उन्हें ना तो छोटे बालक की तरह देखा व नज़रअंदाज किया जाता है और ना ही वयस्क की तरह मान सम्मान ही दिया जाता है। अतः किशोर बालक और वयस्क के अधर झूले में झूलता नजर आता है। अतः बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समायोजन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा बालकों के समायोजन के प्रति प्रेरित करके उनकी समस्याओं को समझने व निराकरण करने में सहयोग मिलता है। विभिन्न प्रकार के समायोजन कब, कैसे और क्यों प्रारंभ होता है, इसका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास के क्षेत्र केवल एक नज़र में। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन, बाल विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, बालकों के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, बाल व्यवहारों तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। पृष्ठ संख्या 15। नंबर 14, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। बालकों का विकास बालक अभिभावक संबंधों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में बालक अभिभावक संबंध अच्छे व मधुर होते हैं, उस परिवार के बालक आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सहयोगी, सहिष्णु व परोपकारी होते हैं। परंतु जिन परिवारों में बालक अभिभावक संबंध मधुर नहीं होते हैं, वहाँ बालकों का उत्तम ढंग से विकास नहीं हो पाता है। जैसे बालक कुसमायोजित होते हैं, उनमें हीन भावना कूट कूट कर भरी होती है। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि यदि शैशवावस्था या बाल्यावस्था में ही बालक के माता पिता का देहांत हो जाता है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व व प्रतिभा विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। नंबर 15, विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत विकास के नियमों एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। सामान्य बालकों के विकास प्रतिमान किस प्रकार से व किस आयु में होते हैं, किस आयु स्तर में बालकों को कौन कौन से विकासात्मक टास्क, डेवलपमेंटल टास्क पूरे हो जाने चाहिए, इसका अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। यदि कोई बालक अपने निश्चित उम्र में उन विकासात्मक टास्कों को पूरा नहीं कर पाता है तो वह बाद की जिंदगी में पिछड़ जाता है। उदाहरणार्थ एक वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, वह सीढ़ी पर चढ़ उतर सकता है, पा पा पा, मा मा मा, ना 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 बोल सकता है, परंतु यदि वह बालक ठीक ढंग से बैठ नहीं पाता है, बबला कर बोल नहीं पाता है, तब वह पता चल जाता है कि उसका शारीरिक, गामक एवं वाणी विकास की गति मंद है तथा उस पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि बच्चा आगे चलकर सभी विकासात्मक टास्कों को समय पर पूरा कर सके। अतः स्पष्ट है कि बाल विकास के अंतर्गत विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना तथा उसकी जांच करना है।